हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। पंडित जी के कहने पर अर्णव ने उस मंगल सूत्र को उठाकर धृति के गले में ऐसे पहनाया जैसे उसके गले में फांसी का फंदा बांध दिया हो। धृति को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुटने लगा हो, पर वो खामोश बैठी रही और अपनी आंखों के सामने चल रहे अपनी बर्बादी के मंजर को खामोशी से देखती रही। मंगलसूत्र के बाद सिंदूर की बारी आई तो माधुरी ने आकर धृति के मांग में सिंदूर उठा दिया। अर्णव ने सिक्के से सिंदूर न लेते हुए नीचे दूसरी थाल में रखे सिंदूर को अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसकी मांग में ऐसे भरा कि उसके बाल, माथे और चेहरे सब पर सिंदूर फैल गया। मांग टीका अपनी जगह से हिल गया, धृति का शरीर कांप उठा और पलकें झुक गईं। अब तक जिन आंसुओं को उसने रोका हुआ था वे उसकी झुकी पलकों के नीचे से निकलकर उसके गालों को भिगोने लगे। अर्णव ने अपना सारा आक्रोश अपने इस एक हरकत से दिखा दिया था जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए थे। ये सदमा कम था कि धृति की मांग में सिंदूर डालते हुए अर्णव उठकर गुस्से में वहां से चला गया। उसने पंडित जी के ये तक कहने का इंतजार नहीं किया कि शादी संपन्न हुई और सीधे सीढ़ियों से होते हुए टेरेस पर चला आया। उसके कंधे पर डाला दुपट्टा अब जमीन पर पड़ा था क्योंकि उसका एक सिरा धृति की चुनरी से बंधा था और अर्णव शादी के तुरंत बाद धृति को वहां तन्हा छोड़कर चला गया था। धृति वहीं मंडप पर अकेली बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। पंडित जी, जो ऐसी अतरंगी शादी पहली बार ही देख रहे थे, पहले ही अर्णव का धृति के लिए रवैया देखकर हैरान थे। अब तो वे आंखें फाड़े अर्णव को देख रहे थे। माधुरी भी हैरानी और परेशानी से अर्णव को देख रही थी। अर्णव, जो गुस्से को बर्दाश्त न कर पाने के वजह से वहां से चला गया था, सीढ़ियों के ऊपर जाकर कॉरिडोर में रुक गया और बिना पीछे मुड़े तेज आवाज में बोला, माधुरी, उसे मेरे कमरे में लेकर जाओ। उसको वहां छोड़कर कबीर के साथ तुम घर चली जाना, काफी लेट हो गया है। इतना कहकर वो कुछ पल रुका। सबकी निगाहें उसी पर जमी हुई थीं। अर्णव भी अपनी जगह ठहर चुका था। अब उसने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, कबीर, पंडित जी को उनके काम की कीमत देकर यहाँ से भेज दे और साथ में ये भी समझा दे कि आज यहाँ क्या हुआ। अगर ये बात इस चारदीवारी से बाहर गई तो क्या हो सकता है उनके साथ। अर्णव गुस्से में वहां से जा चुका था। वहीं उसकी गुस्से भरी धमकी सुनकर पंडित जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और जैसे ही निकलने लगे कबीर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। पंडित जी उसको देखकर घबरा गए और हड़बड़ाहट में बोलने लगे, यजमान, आप बेफिक्र रहें, यहाँ हमने क्या देखा और यहाँ क्या हुआ हम वो सब भूल चुके हैं। आप निश्चिंत रहें, हम बाहर किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, बस हमें सुरक्षित यहाँ से प्रस्थान करने दीजिए। उनका घबराया हुआ चेहरा देखकर कबीर ने मुस्कुराकर अपने वॉलेट से पैसे निकालकर उन्हें देते हुए कहा, घबराइए नहीं पंडित जी, मैं तो बस आपको आपकी मेहनत की कमाई देने के लिए आपके पास आया था। बिना दक्षिणा लिए अगर आप आज यहाँ से चले गए तो हमें पाप लगेगा। उसकी बात सुनकर पंडित जी ने जबरदस्ती की मुस्कान लबों पर चिपकाते हुए पैसे ले लिए और खिसियाते हुए मन ही मन बोले, एक कन्या की इच्छा के विरुद्ध शादी करवाने का पाप हमें लगवाकर खुद पुण्य कमाना चाहते हैं, पर इन्हें ज्ञान नहीं कि कुंवारी कन्या पंडित समान ही पूजनीय होती है और उनके साथ बलपूर्वक विवाह करने के पाप से मुक्ति उन्हें इस जन्म में कभी नहीं मिल सकती। उनकी वाणी में रोष भाव साफ झलक रहे थे। अगर उनकी जान की बात न होती तो शायद वे कभी इस अधर्म के भागी न बनते, पर अब वे कर ही क्या सकते थे, वे वहां से चले गए। धृति अब भी उस जगह पत्थर बनी बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और निगाहें हवन कुंड में जलती अग्नि पर टिकी थीं, जिसकी ज्वाला ने उसकी जिंदगी को झुलसा कर रख दिया था। माधुरी ने कबीर को देखा तो उसने उसे कुछ इशारा किया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। धृति को तो जैसे अपना ही होश नहीं था, उसका दिमाग उसी पल पर ठहर गया था जब अर्णव ने उसकी मांग पर सिंदूर डाला था। वो सुन्नसी वहां बैठी हुई थी और आंसू अब सूख चुके थे। एक पल में उसकी जिंदगी ने उसे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया था। जो लड़की आज तक अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए इतने संघर्ष करती आ रही थी, आज उसके एक फैसले ने उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसका एक फैसला, ये शादी उसे जिल्लत भरी जिंदगी दे चुकी थी और वो कुछ नहीं कर सकी। माधुरी को उसकी हालत देखकर उस पर तरस आ रहा था, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। उसकी मजबूरी थी कि उसे अर्णव के आदेश मानने ही थे। उसने धृति के कंधे पर हाथ रखा तो उसकी पलकें हल्की सी हिलीं और आंखों से कुछ बूंद आंसू आज़ाद होकर उसके गालों पर लुढ़क गए। उसने अपनी पलकों को झपकाते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, फिर भी कुछ आंसू उसके गालों को भिगो गए। माधुरी को उसका दर्द देखकर उसके लिए बुरा लग रहा था। उसने उसके कंधे पर हल्का दबाव बनाते हुए कहा, मैम। इतना कहकर वो चुप हो गई। उसे समझ नहीं आया आगे कैसे कहे, जिन हालातों में उसके अर्णव से शादी हुई और जो उसकी हालत है, वो उसे कैसे कहे कि अब उसे अर्णव के कमरे में जाना है। धृति के भी अर्णव की बात सुनी थी, इसलिए माधुरी के चुप होने पर वो खुद ही अपने भारी लहंगे को संभालते हुए उठकर खड़ी हो गई। उसने अर्णव के दुपट्टे को भी उठा लिया और थमे कदमों से आगे बढ़ गई। उसकी हालत देखकर माधुरी की आंखों में नमी तैर गई। वो उसे संभालते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। माधुरी ने सकुचाते हुए अर्णव के कमरे का दरवाज़ा खोला और धृति को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गई। धृति, जो अब भी अपने होश में नहीं थी, बस खोई हुई सी उसके साथ चली आ रही थी, पर उस कमरे का दरवाज़ा खुलते ही वहाँ की हवाओं में घुली भीनी भीनी सी खुशबू ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। उसने निगाहें उठाकर देखा तो पूरे रूम को फूलों और खुशबूदार कैंडल से बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। रूम में हल्की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। उस बड़े से बेड के बीचों बीच गुलाब की पंखड़ियों से बड़ा सा दिल बनाया हुआ था और उस पर हंसों के जोड़े को बिठाया हुआ था, जो प्रेम मिलाप में लिप्त थे। पूरे रूम को उनकी पहली रात के लिए बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था और ये सब देखकर धृति का दिल घबराने लगा था। शादी तो मजबूरी में कर ली थी, पर ये सब तो उसने सोचा ही नहीं था। वो घबराई निगाहों से उस रूम को देख रही थी। माधुरी ने उसे बेड के बीचों बीच बिठाया, फिर अपने दुपट्टे से उसके चेहरे और बालों पर फैले सिंदूर को साफ करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी पूरी तरह से वो उसके चेहरे को साफ न कर सकी। उसके गोरे मुखड़े पर सिंदूर की आभा फैल चुकी थी, जो उसे और ज्यादा हसीन बना रही थी। माधुरी उसे ठीक से वहां बिठाकर रूम से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ कबीर टेरेस पर पहुंचा, जहां कॉर्नर में अर्णव खड़ा सामने दूर दूर तक फैले समुद्र को देख रहा था। कबीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सामने निगाहें जमाते हुए बोला, अर्णव, अपने गुस्से और नफरत में अंधा मत बन यार। शादी तक तो फिर भी ठीक था, पर अब जो तू करने जा रहा है वो गलत है। किसी भी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी मर्जी के खिलाफ उसके करीब जाना ठीक नहीं है। अपने बदले को पूरा करने के लिए हमें इस हद तक गिरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आज तूने उसके साथ कुछ गलत किया तो इस गिल्ट से तुझे उम्र भर मुक्ति नहीं मिल सकेगी कि तूने एक लड़की की इच्छा के खिलाफ जाकर उसके मान को भंग किया है। मत कर यार ये। कबीर उसे कुछ कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था और वो कुछ परेशान नजर आ रहा था। वहीं अर्णव के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। उसने बिना किसी भाव के कहा,
जिस हद तक वो गिरी है, मैं उसके लेवल तक कभी गिर ही नहीं सकता। और तू क्या उसकी इज्जत की बात कर रहा है? वो अपने स्वार्थ के लिए खुद अपनी मर्जी से जाने कितने ही लड़कों के साथ हमबिस्तर हो चुकी होगी। मेरे उसके साथ कुछ करने या ना करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मान भंग होने के लिए उसका होना भी जरूरी है। और जैसी वो लड़की है, उसका ना कोई चरित्र है और ना ही स्वाभिमान। रही बात मुक्ति की, तो मुझे उसकी ख्वाहिश भी नहीं। मैं तो बस उसके गुरूर को अपने दो तले रौंदना चाहता हूँ। बहुत घमंड है उसको अपनी खूबसूरती पर। इसी खूबसूरती के जाल में वो अमीर लड़कों को फंसाती है, पर आज वो मेरे बनाए इस चक्रव्यूह में इस कदर उलझ चुकी है कि अब चाहकर भी कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। अब से उसकी खूबसूरती पर, उस दिल पर, उसके ख्यालों पर और उसके जिस्म पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। और अब मैं उसको दिखाऊंगा कि कैसा लगता है जब कोई आपकी मर्जी के खिलाफ आपको छूता है, आपकी इज्जत के साथ खेलता है, तो कितनी तकलीफ होती है। इसी हुस्न के जाल में फंसाकर जाने उसने कितनों की जिंदगी तबाह की होगी। आज मैं उसे इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि वो मेरे अलावा किसी के तरफ निगाहें उठाकर भी देख सके। और इस बारे में मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। नादान नहीं हूं मैं, जो कर रहा हूं बहुत सोच समझ कर रहा हूं, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि इसका क्या अंजाम हो सकता है। पर मुझे अंजाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये सब मैंने ही प्लान किया है। रात बहुत हो गई है, माधुरी तेरा इंतजार कर रही होगी। तू जा, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। अर्णव ने सख्त लहजे में अपनी बात कही और कबीर चाहकर भी उसे रोक न सका। अर्णव अपने गुस्से और नफरत में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे सही और गलत में फर्क ही नहीं नजर आ रहा था और ना ही वो किसी की कोई बात सुनने या समझने को तैयार था। ऐसे में कबीर हारे हुए खिलाड़ी की तरह वहां से चला गया। अर्णव ने निगाहें उठाकर आकाश को देखा। बारिश कुछ थम चुकी थी पर हल्की हल्की बूंदाबांदी अब भी हो रही थी और आकाश में काले बादल अपना पहरा जमाए बैठे थे। अर्णव की बेचैन निगाहें शायद उन काले बादलों के बीच किसी के अक्स को तलाश रही थीं, पर आज उसे वो चेहरा नजर नहीं आया जिसे वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में अजीब सा दर्द और सुनपन नजर आ रहा था और अगले ही पल वो दर्द गुस्से में बदल गए। उसके क्रोध के उस प्रचंड वेग में अब धृति की अस्मिता झुलसने वाली थी जिसका भान तक नहीं था उसे।